श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदम् अर्थात ये ज्ञान, उपाश्रित्य मतलब इसके ज्ञान के आश्रय लेकर के व्यक्ति भगवान के साधर्म्यम, भगवान की जैसी स्थिति है सच्चिदानंद स्थिति, वैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है और जब सृष्टि होती है और प्रलय होती है उससे वो प्रभावित नहीं होता। अनुवाद, इस ज्ञान में स्थिर होकर के ये प्रकृति के गुणों के बारे में और गुणों से मुक्त होने के संबंध में जो ज्ञान है जो भगवान दे रहे हैं उसके संबंध में जान करके, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी अर्थात भगवान कृष्ण जैसी दिव्य प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सुंदर टीका की है उस पर हम पहले देखेंगे, फिर श्रील प्रभुपाद जी की टीका को भी हम देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कैसे, गुरु के सेवा करके, उपाश्रित्य अर्थात गुरु की शरण में जाकर के, तो वह साधर्म प्राप्त करता है। यानी भगवान का जैसा धर्म है, भगवान का जैसा स्वभाव है, उसको वो प्राप्त करता है और शाश्वत रूप से जो आत्मा के 8 गुण हैं उसको वो प्रकाशित करता है। आत्मा के 8 गुण हैं, पाप से रहित रहना, मृत्यु से रहित रहना, पाप, मृत्यु, बुढ़ापा, भूख, प्यास और शोक, इससे पूरी तरह से मुक्त होना, इससे रहित रहना और अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेना, करने की शक्ति और हमेशा सत्य को प्रकाशित करना। तो ये भगवान के गुण हैं और ये आत्मा के भी गुण हैं। तो साधर्म प्राप्त करने का अर्थ आप समझ गए, ये 8 गुण आत्मा वापस प्राप्त कर लेता है। तो बार बार अभ्यास करने के द्वारा आत्मा इन गुणों को, जो कि आत्मा के गुण हैं, उसको प्रकाशित करता है और गुणों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं होते हैं, इसीलिए कर्म के अनुसार उनका जन्म या मृत्यु नहीं होती है। इसका अर्थ है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और वो भगवान के धाम चले जाते हैं। प्रभुपाद जी इस बात को समझाएंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसे एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से इसको प्राप्त किया है। व्यथंती, आप देख सकते हैं बहुवचन शब्द है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है। तो इसका अर्थ ये है कि यह श्लोक बताता है कि इस मुक्ति में बहुत सारे जीव हैं। अर्थात यहां पे जो व्यथंति चा, उससे आप देख सकते हो कि उपजायन्ते शब्द जो है और व्यथंति शब्द, ये दोनों ही दिखाता है बहुवचन को। तो इसका अर्थ ये है कि मुक्ति के बाद, बहुत गुह्य बात है, जरा देखिएगा, मुक्ति के बाद जो बहुत सारे जीव यहां मुक्त हुए वो एक ही नहीं बन जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बार लोग सोचते हैं मुक्ति में जाकर व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन यहां पे व्यथंति च मतलब जीव मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद उनकी सत्ता बनी रहती है। प्रभुपाद इस बात को अपने अनुवाद में, अपने तात्पर्य में समझाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीव मुक्त हो रहे हैं लेकिन मुक्त होने के बाद भी उनकी स्थिति बनी रहती है, उनकी जो सत्ता है वो बनी रहती है। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही बन जाते हैं या एक में जाके मिल जाते हैं। और ऐसा श्रुतियों के द्वारा भी प्रमाणित है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। तो जो भक्त हैं, यहाँ पे शब्द है सदा पश्यन्ति सूर्यः, सूर्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्त और पश्यन्ति मतलब देखते हैं, तो यानी कि भगवान के धाम में भगवान के चरणों को भक्त लोग देखते हैं। ये ऋग्वेद का सूत्र है 1:22:20। तो अर्थात भगवान के धाम में भक्त बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहां जाकर सारी आत्मा एक हो जाती हैं और कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता है। सब जीवात्माएं अलग अलग रूप में अलग अलग अपने इच्छाओं के अनुसार कृष्ण की सेवा करती हैं। तात्पर्य, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको गुणात्मक समता समझ में आ गई होगी। मृत्यु से, बुढ़ापे से, पाप से, प्यास से, भूख से और शोक से मुक्त होना, हमेशा अपने हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति और सत्य को प्रकाशित करना हमेशा, तो इस प्रकार के साधर्म को भगवान से वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता, इसकी भी चर्चा हमने कर ली थी। ऐसा नहीं है कि सारी जीवात्मा जाकर के एक हो जाती है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अभी ये श्लोक हमने कोट किया था श्रील बलदेव विद्याभूषण से, सदा पश्यन्ति सूर्यः, ये जो भक्त हैं वो सदैव भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं वैकुंठ में। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। तो आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्लोजली श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को सट के चल रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ते हैं तो सारे आचार्यों का जो टीका है उसका समावेश हमें मिल जाता है। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा दूषित रहता है, और उसका उद्देश्य जो होता है, जिस जगत में ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य होता है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का हम भोग कैसे करें। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वह गुणों से दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है, और उस दिव्य ज्ञान के अनुशीलन से व्यक्ति गुणों से मुक्ति प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। इसको हम समझा चुके हैं, भगवान के ही समान उसके गुण हो जाते हैं, लेकिन ये समझना नहीं चाहिए कि भगवान बन जाता है। जिस प्रकार से एक अग्नि की चिंगारी, छोटी चिंगारी, वो धरती से में पड़ जाए तो बुझ सकती है, लेकिन महान जो अग्नि है वो नहीं बुझती है। तो जो चिंगारी है वो वापस अग्नि के संपर्क प्राप्त करती है तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आग बन जाती है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है, अर्थात जो जीव है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भौतिक जगत में कार्यकलाप है जिसकी वजह से दुख होता है, तो आध्यात्मिक जगत के में कैसे कार्यकलाप हो सकते हैं। इसको दुख को समाप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति कोई भी कार्य न करे, पूरा जीरो हो जाए। लेकिन वो भगवान के धाम में पहुंच करके जो जीव विभिन्न प्रकार की सेवा करता है भगवान की, उससे वो अवगत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार इस जगत संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन उसी प्रकार का अर्थ समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से इस जगत में भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा विविधता है, वहां पे आध्यात्मिक जगत में ये जो विविधताएं हैं वो भौतिक गुणों के द्वारा नहीं है, अपितु सब कुछ वहां पे स्पिरिचुअल है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। तो यानी यहां पे विविधताएं हैं और उल्टा का मतलब है जीरो, कोई भी वैरायटी नहीं होना। विविधता का अर्थ है वैरायटी। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और वहां पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उनके विनाश से प्रभावित नहीं होता। और उसका तरीका क्या है? तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो उसको भगवान इस अध्याय में समझाएंगे किस प्रकार से भक्ति करने से आत्मा अपने गुणों को वापस प्राप्त करता है और भगवान से गुणात्मक रूप से एकता प्राप्त करता है। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि जीवात्मा कभी भी भगवान में मर्ज नहीं करता है, अपने अस्तित्व को नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि 13वें अध्याय में भी और दूसरे अध्याय में और बार बार हम सीख रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। तब इसके बाद में भगवान आगे चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।